22 अगस्त दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फजल। कश्मीर में विपक्ष के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला,
हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो एक सियासी मसला है, वक्तन फवक्तन इस तरह के हालात बन जाते हैं, लेकिन अगर सियासी तौर इनका।
पीवी सिंधु का हैदराबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत। और एक नजर रियो ओलंपिक में भारत के खराब प्रदर्शन पर।
परफॉर्मेंस ओवरऑल तो डिसअपॉइंटिंग है, मतलब इसके बारे में अब हमको बैठ के सोचना पड़ेगा। ये कहना कि साहब नहीं, हमने बड़ी मेहनत की और वहाँ जाके हमारे लोग अच्छा नहीं कर पाए, ये हम बहुत सालों से सुन रहे हैं।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशासित कश्मीर की हालत पर दुख जताते हुए कहा है कि वहां मारे जा रहे लोग, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हों या आम नागरिक हों, वे सभी मोदी के शब्दों में हमारे अपने हैं, अपने राष्ट्र का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कश्मीर के विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान मोदी ने ये बातें कही। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि संविधान के दायरे में हमें जम्मू कश्मीर का अस्थायी हल ढूंढना होगा। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने कहा है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट का सीरिया के उत्तरी इलाके से पूरी तरह से खात्मा किया जाना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें आ रही हैं कि तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोही आईएस के नियंत्रण वाले शहर जराबलुस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। विदेश मंत्री राजधानी अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था,
दाइश diğer terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.
हम लोग इस्लामिक स्टेट और दूसरे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम लोग उन देशों को अपना समर्थन जारी रखेंगे जो इन संगठनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विरोधी लड़ाकों ने अलराय शहर पर सफलतापूर्वक हमला किया है। हमारी सीमा पूरी तरह से आईएस से खाली होनी चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री के शब्द। इस बीच खबर है कि सीरियाई शहर हस्का में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। वहां कुर्द लड़ाके YPG ने सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों पर भीषण हमला किया है। सीरिया सरकार विरोधी लंदन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि ताज़ा हमला सोमवार की सुबह शुरू हुआ और कुर्द लड़ाकों ने पूर्वी इलाके गवारन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। सीरियाई लड़ाकू विमान शहर के ऊपर देखे गए हैं, लेकिन अभी कहीं से भी हवाई हमले की जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़ाई छिड़ जाने के कारण हजारों लोग शहर छोड़कर दूर दराज के गांवों में चले गए हैं। रूस ने कहा है कि अब उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया पर हमला करने के लिए ईरानी एयरबेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तेहरान में रूसी राजदूत लिवान जगारियान ने कहा कि फिलहाल हम वहां से हट गए हैं, लेकिन भविष्य में इसके इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस ने यह फैसला तब किया जब ईरान के रक्षा मंत्री ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि रूस ने ईरानी एयरबेस करने की बात सार्वजनिक क्यों की। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर के विपक्षी नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और उसने घाटी में वर्तमान संकट के समाधान के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाए जाने और पहले की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में मौजूदा स्थिति को लेकर गहरी पीड़ा जताई और संविधान के दायरे में स्थायी समाधान निकालने के लिए वार्ता करने की जरूरत पर बल दिया। सलमान रावी की रिपोर्ट।
विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक लगभग एक घंटे तक चली। बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेमोरेंडम को स्वीकार किया और ये भी माना कि जम्मू कश्मीर का मसला सियासी भी है।
हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार किया, جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, وقتاً فوقتاً اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں, لیکن اگر سیاسی طور ان کا حل کھوج کے نکالا نہیں جاتا تو بار بار ہم سے یہی غلطی ہوگی, یہی چھوٹ ہوگی. وزیراعظم صاحب نے بھی اپنی جگہ اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ میں ہی ان مسئلوں کا حل نہیں ہے.
عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے وپکشی دلوں کے پرتندھی پردھان منتری کے پاس کوئی شکوا یا کسی کی شکایت لے کر نہیں گئے تھے.
ہماری باتوں کا تھوڑا سا اثر ہوگا, ہم یہاں کسی کے خلاف شکایت یا شکوا لے کے نہیں آئے, ایک فرمان ایک گزارش لے کے آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس پہ جب عمل ہوگا تو جموں کشمیر کو تو اس کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا, لیکن باقی ملک پہ بھی اس کا ایک اچھا اثر ہوگا, یہی پیغام لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں.
راجیہ سے آئے وپکش کے پرتندھی منڈل میں شامل جموں کشمیر میں مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے نیتا محمد یوسف تارگامی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
listen to our concern. سب سے بڑی بات یہی ہے نا کہ listen patiently.
تاریگامی کہہ رہے تھے کہ بیٹھک میں پردھان منتری کا رخ کافی ساکاراتمک تھا اور انہوں نے سنجیدگی اور دھیرے کے ساتھ سب کی باتیں سنی. تاریگامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پردھان منتری کی باتوں سے یہ سندیش سپشٹ تھا کہ وہ پورے مسئلے کو لے کر گمبھیر ہیں اور اس کا حل بھی نکالنا چاہتے ہیں. وہیں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش غلام احمد میر نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پردھان منتری کے ساتھ ہوئی بیٹھک کا انوبھو ساجھا کیا. انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے کہا کہ پرتندھی منڈل کی باتیں ان کے دل کو چھو گئی ہیں کیونکہ بہت ساری نئی جانکاریاں انہیں ملی ہیں.
بائی اینڈ لارج ہم فی الحال آج کے دن پر پازیٹو مان کے چل رہے ہیں. بڑا اپریشیٹ کیا کہ مجھے پتا ہے اپوزیشن اپنے طریقے سے انیشیٹو لے کر کے دلی پہنچے ہیں, راشٹرپتی سے ملے ہیں اور لیڈران سے مل رہے ہیں, اور ہمیں بھی جو جانکاری آپ لوگوں نے دی ہے اور جو کچھ واقعات آپ لوگوں نے بتایا, جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیا ہے, یہ میرے لیے بھی کچھ مطلب اس میں کچھ نئی چیز سمجھنے کی چیزیں ملے ہیں. میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ الون کین ناٹ بی دا سولوشن.
پردھان منتری کے ساتھ ہوئی بیٹھک پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے جموں کشمیر کی مکھیہ منتری محبوبہ مفتی کا کہنا تھا,
اچھی بات ہے اگر کوئی اچھا اس کا نتیجہ نکلے گا جموں کشمیر میں امن بحال کرنے کے لیے. جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت خون خرابہ ہو رہا ہے, پتھر بازی ہو رہی ہے, باقی ہڑتالوں کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے مال و جان کا نقصان ہو رہا ہے, اگر اپوزیشن میں یہ سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے مل کے وہ اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے.
بہرحال عمر عبداللہ کے نیتوتو میں گئے وپکشی دلوں کے پرتندھی منڈل کو پردھان منتری نے آشوست کیا کہ جلد ہی گرہ منتری راجناتھ سنگھ راجیہ کا دورہ کریں گے. پردھان منتری کارالے دوارا جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت ہونی ہی چاہیے اور سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے کشمیر مسئلے کا ستھائی حل ڈھونڈا جانا چاہیے. سلمان راوی, بی بی سی دلی.
یہ تو رہی کشمیر کے وپکشی نیتاؤں سے پردھان منتری کی ملاقات کی خبر, لیکن کشمیر میں آج کے دن کیا حالات رہے یہ جاننے کے لیے میں نے شری نگر فون کر بی بی سی سنواداتا ریاض مسرور سے سمپرک کیا.
جی دیکھیں حالات تو جوں کے توں ہیں, کیونکہ 10 کے 10 ضلعوں میں کرفیو میں کوئی بھی نرمی نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ جو پچھلے دن رکشا بندھن کے دن امرناتھ یاترا سمپن ہوئی تو جو امرناتھ یاترا کی سیکورٹی پہ فورسز لگی تھی ان کو بھی ڈپلوائے کیا گیا ہے اب گلی محلوں میں بستیوں میں کرفیو کو سخت کرنے کے لیے. تو یہ جو کرفیو میں کسی طرح کی ڈھیل نہیں دی جا رہی ہے یہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ استھتی کو دیکھ کر کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہر روز یا دو دن بعد کوئی نہ کوئی نئی گھٹنا گھٹتی ہے جس میں کوئی مارا جاتا ہے. جیسے کل ہی پرانے سری نگر میں ایک یوا مارا گیا 17 سالہ, تو اس کے بعد جو ہے پوری طرح سے ٹینشن پریویل ہو گیا, پوری سٹی تناؤ گرست ہو گئی. تو آج اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے پوری طرح سے سارے گلی محلوں کی ناکہ بندی کی گئی اور کرفیو کو سخت کیا گیا.
اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرک اور آئل ٹینکرز کی ہڑتال بھی شروع ہو گئی ہے.
ہاں جی بالکل, وہ یہ تو سب سے بڑی گھٹنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک کٹھن جو ہے دور شروع ہو گیا ہے کشمیریوں کے لیے, کیونکہ ٹرک اور آئل ٹینکرز کی ہڑتال کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضروری سامگری یہاں آتی ہے بھارت کے وبھن دیشوں سے, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, وستویں ہوں, یا دوائیاں ہوں, یا بیبی فوڈ ہو, تو وہ سب رک جائے گا. सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है या आर्मी है उनके लिए भी जो सप्लाईज आती है वो भी रुक जाएंगी। यहाँ तक कि जो सियाचिन पर इंडियन आर्मी पोस्टेड है उनके लिए भी सप्लाई ट्रक से ही जाती है। तो ये सब जो है वो प्रभावित हो गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने प्रशासन के साथ कल रात में एक मीटिंग भी की थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो जो है सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि हाईवे पे उनको रात में ट्रैवल करने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन दिन में वो कहते हैं कि दिन में कई जगह पे प्रदर्शन होते हैं, पथराव होता है, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन वो टॉक्स फेल हो गई हैं और उनकी हड़ताल अभी भी जारी।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों के खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने की खबर है। इसके अलावा कई अन्य नदियां भी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और शहरों में काफी अंदर तक पानी घुस आया है। आइए सीधे चलते हैं समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, बताएं कितनी बुरी स्थिति है बाढ़ की उत्तर प्रदेश में।
जी रोहन जी, जैसा आपने कहा कि इलाहाबाद और गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। इसके अलावा और भी जो दो और प्रमुख नदियां हैं, घाघरा है, टोल्स है, ये सारी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इलाहाबाद और बनारस की स्थिति ये है कि गाँव में तो कई गांव जलमग्न हो गए हैं, फसलें खराब हो गई हैं, वहीं शहरों में कई मोहल्ले पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मकान एक मंजिल तक लोगों के डूबे हुए हैं, जिनके पास दूसरी मंजिल है वो किसी तरह से दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हुए हैं, नहीं तो छतों पर लोग रहने को मजबूर हैं। वाराणसी में स्थिति ये है, वहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो बनारस में गंगा के किनारे के मशहूर घाट हैं वो सारे के सारे डूबे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट पर इतनी जगह भी कहीं आसपास भी नहीं है कि लोग शवों को जला सके, छतों पर चिताएं जलानी पड़ रही हैं, इस तरह की स्थिति है। इसके अलावा जो 3 साल से 4 साल से पानी की एकदम मार फह रहा था बुंदेलखंड का इलाका, बाढ़ की विभीषिका, वहाँ भी बहुत तबाही मचाए हुए हैं और कई बांदा के जिलाधिकारी से बात हो रही थी, उनका कहना है कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, प्रशासन भी अपने सारे अधिकारियों को तैनात किए हुए हैं, राहत सामग्री पे खासतौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पे जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ पे आए, और लोगों को वहाँ रखा भी गया है। कई लोगों से शिविर के में भी लोगों से बात हमने फोन पे जहाँ संभव हो सका की, उनका यह कहना था कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन चूंकि अब घर में लोग जिस तरह से रहते हैं और राहत शिविर उतने ज्यादा नहीं है या उनमें उतनी जगह नहीं है जितने की लोग प्रभावित हुए हैं, जितने की विस्थापित हुए हैं अपने घरों से।
समीर, कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति कुछ बेहतर होगी या ये स्थिति इसी तरह विकराल रूप धारण किए रहेगी?
स्थिति अभी फिलहाल 2-4 दिन तक तो सामान्य होने की नहीं है, क्योंकि नदियों में जो पानी है और कई जगहों से पानी उत्तर प्रदेश की नदियों में छोड़ा भी गया है, बाहर से भी छोड़ा गया है, बांदा के जिलाधिकारी भी ये बात बता रहे थे। और इसके अलावा बारिश लगातार हो रही है हर जगह पे, रुक रुक करके बारिश हो रही है, तो इसलिए अभी अनुमान, ये जो मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अभी फिलहाल राहत के आसार 1-2 दिन तो नहीं है, अगर बारिश रुक जाती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ राहत मिलने की संभावना है।
बहुत बहुत धन्यवाद समीर आत्मज मिश्र आपका। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। पश्चिमी अफ्रीका के देश माली में सांस्कृतिक इमारतों और जगहों की तबाही और तोड़फोड़ के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माली के शहर टिम्बक्टू में पुरानी कब्रों की जगह और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट करने के जुर्म में इस्लामी चरमपंथी अहमद अल फाकी अल मेहंदी ने अपने जुर्म को कबूलते हुए माफ़ी मांगी है। ये पहली बार है कि किसी चरमपंथी पर मुकदमा चला हो और पहली ही बार है कि एक चरमपंथी ने माफी मांगी हो। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ वैभव श्रीवास्तव।
अहमद अल फाकी अल मेहदी पर 2012 में इस्लामी चरमपंथियों के एक समूह की अगुवाई करने के आरोप हैं, जो टिम्बक्टू में मौजूद ऐतिहासिक महत्व वाली इन जगहों की तबाही करने के लिए जा रहा था। टिम्बक्टू की इन सभी जगहों को ऐतिहासिक वैश्विक धरोहर माना गया था। सांस्कृतिक जगहों की तबाही के सिलसिले में ये पहला मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस तरह के केस की सुनवाई कर रही है। ये केस इसलिए भी अलग है क्योंकि पहली बार किसी इस्लामी चरमपंथी पर मुकदमा चला है और उसने अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांगी है। कोर्ट में बयान देते हुए अल मेहदी ने दुनिया के सभी मुसलमानों से कहा कि वे लोग उनके गुनाहों को कभी ना दोहराएं।
I would like to give a piece of advice to all Muslims in the world.
मैं सभी मुसलमानों को हिदायत देना चाहता हूं कि जो काम मैंने किए हैं वो काम कोई ना करे। इस तरह के काम इंसानियत के खिलाफ होते हैं।
अल मेहदी ने बयान देते हुए ये भी कहा कि वो ऐसे काम फिर कभी नहीं करेंगे।
मुझे उन लोगों ने इन इमारतों को तबाह करने के लिए कहा। मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे लगा ऐसा करना सही होगा। इस्लामी कानून के मुताबिक कुछ बातें गलत हैं। मैं कसम खाता हूं कि ऐसा फिर नहीं करूंगा। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
अलकायदा के 2012 में माली पर नियंत्रण छीन लेने के बाद इन इमारतों और ऐतिहासिक जगहों को तबाह कर दिया गया था। कोर्ट के सामने गवाही देते हुए अल मेहदी ने कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं।
It is with deep regret and with great pain.
मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी तबाही के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। परिवार, मेरे देश टिम्बक्टू और माली के लोगों को दुख पहुंचाने के लिए मैं शर्मिंदा हूं।
चरमपंथी अल मेहदी के शब्द। वकीलों के मुताबिक अल मेहदी चरमपंथी समूह अंसार दिने का सदस्य था जिन्होंने टिम्बक्टू पर काफी वक्त तक कब्जा किया हुआ था। इन चरमपंथियों के मुताबिक ये सभी ऐतिहासिक जगह और वैश्विक धरोहर वाली इमारतें इस्लाम के खिलाफ हैं। अल मेहदी की अपील के बाद उन्हें ज्यादा से ज्यादा 30 साल की सजा मिल सकती है। 13वीं से 17वीं सदी तक टिम्बक्टू इस्लामी विद्या और शिक्षा का केंद्र था जहां से धर्म, कानून, साहित्य और विज्ञान की कई किताबें बरामद हुई हैं।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और अमरेश द्विवेदी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज मेरे साथ हैं अमरेश द्विवेदी।
मेरा भी नमस्कार, स्वीकार करिए
जी। तो अमरेश द्विवेदी और राजेश जोशी आपकी चिट्ठियां लेके हाजिर हैं। और अमरेश, अब आप बताइए कि सबसे पहली चिट्ठी क्या है। मुझे लगता है कि जो इंडिया बोल इस शनिवार को प्रसारित हुआ था उसके बारे में ढेर सारी चिट्ठियां मैं देखा।
ढेर सारी चिट्ठियां और ईमेल आई हैं शनिवार को प्रसारित इंडिया बोल पर, जिसमें हमारे पुराने साथी और खेल विशेषज्ञ मलय नीरव ने हिस्सा लिया था। पहली चिट्ठी मैं लेता हूँ गाँव सेमरा जिला गोपालगंज बिहार से। हमजा इकबाल लिखते हैं, मलय नीरव जी के साथ ओलंपिक्स पर बहुत सार्थक चर्चा हुई, परंतु मोहनलाल जी से मेरा निवेदन है कि ये निष्कर्ष की बात भी किया करें। दूसरी बात, हम मीडिया भी उतनी जिम्मेदार हैं जितनी सरकार, क्योंकि खेलों के विषय में जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको सही ढंग से हम उजागर नहीं करते।
हमजा इकबाल साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मलय नीरव की संगत में जो कार्यक्रम हुआ था वो बहुत ही अच्छा था, मैंने भी सुना था। जहां तक निष्कर्ष का सवाल है तो हर बार हम लोग निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को सबके सामने रखा जाए और लोगों की राय उस पर ली जाए। निष्कर्ष तक पहुंचना तो बड़े बड़े नेताओं के वश की बात भी नहीं होती है। और इसका क्या नतीजा निकाला जाए कि भारत ओलंपिक्स में कैसे मेडल जीत ले, मुझे लगता है बीबीसी स्टूडियो में तो हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे हासिल किया जाएगा।
और हमारे श्रोता तय करें,
श्रोता तय करें और सरकारें तय करें कि क्या और किया जाना चाहिए, लेकिन हमने तो ये रख दिया सामने कि ये समस्या है
जी। राजेश जी, अगली चिट्ठी लेता हूँ। सलारपुर खगड़िया बिहार से प्रशांत पोद्दार लिखते हैं, इस बार इंडिया बोल इसलिए पसंद आया क्योंकि मलय नीरव ने बेहद जरूरी बातों पर रोशनी डाली।
जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मलय नीरव के पास जानकारियां जो होती हैं बहुत ठोस जानकारी होती है और जो उनका बोलने का अंदाज है उसके तो हम सब लोग मुरीद हैं।
जी ऐसा लगता है इस बार तमाम चिट्ठियां मलय नीरव को केंद्र में रखकर ही लिखी गई हैं।
मैं चाहता हूं कि आप एक के बाद एक ये चिट्ठियां पढ़ दें ताकि जितने भी हमारे श्रोताओं ने इंडिया बोल के बारे में चिट्ठी लिखी है इस बार के, उन सब का कम से कम नाम और पता तो आ जाए।
जी मैं कोशिश करता हूँ। रफीक परकार हैं करजी खेड़ रत्नागिरी से लिखते हैं, मलय नीरव बहुत भाविक और दुखी स्वर में बोल रहे थे, मेरा फोन लगा नहीं वरना अपना कहता है कि जिस देश में कुछ इंसान कचरे में अपना भोजन तलाश करते हों और कुछ ऐश करते हों, वहां के खिलाड़ी ओलंपिक से खाली हाथ ना लौटें तो क्या करें।
दो मेडल आ गए तो ये भी सुकून की बात है, ये कहना चाह रहे हैं
जी। और विपिन कुमार ने रजौली हाजीपुर बिहार से लिखा है, शनिवार 20 अगस्त का इंडिया बोल कार्यक्रम विश्लेषणात्मक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से एकदम सही था। और ये भी मलय नीरव का जिक्र करते हैं, लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार मलय नीरव की कॉम्बी फ्लेम वाली टिप्पणी ने काफी हंसाया और ऊर्जा प्रदान की।
जी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को याद होगा, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि किस तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर कोई चोट लग गई किसी को तो कहते हैं कॉम्बी फ्लेम खा लो।
जी, और गांव मछगरा पोस्ट चिरौली जिला सिवान से सजीद अली ने भी कार्यक्रम की तारीफ की और कहा है कि मलय नीरव और मोहनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना। मुझे लगता है चिट्ठियां और भी हैं, अगर आप चाहें तो और श्रोताओं की चिट्ठियां भी पढ़ सकते हैं।
जी, और ये गुजारिश की है बलदेव सिंह ने गुरदासपुर पंजाब से, लिखा है कि रेहान फजल भाई को कश्मीर की वास्तविक स्थिति यानी कितना हिस्सा किसके पास है इस पर सटीक जानकारी देनी चाहिए।
यानी अब हम इंडिया बोल से आगे बढ़ चुके हैं और कश्मीर जा चुके हैं। जी, बलदेव सिंह जी आपने सही कहा, कश्मीर को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में दिल में असमंजस की स्थिति है कि जो नक्शा हम कश्मीर का देखते हैं उसमें कितना हिस्सा भारत के पास है, कितना हिस्सा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में है, कितना अक्साई चिन है जो चीन के हिस्से में है या चीन के कब्जे में है। तो ये असमंजस की स्थिति, हालांकि स्कूलों में पढ़ाया ही जाता है लेकिन कभी अगर संभव हुआ तो रेहान साहब इस पर विवेचना प्रस्तुत करेंगे, कश्मीर के इतिहास पर जरूर एक विवेचना की जानी चाहिए।
और अगली चिट्ठी है राजेश जी, गांव सिमरा कोला जिला बांका बिहार से कुमोद कुमार ने लिखा है, लिखते हैं पत्र मैंने बहुत लिखे लेकिन शामिल नहीं किए गए।
ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर श्रोता पत्र लिखते हैं तो शामिल तो होते ही,
और आज हम शामिल कर रहे हैं,
शामिल कर भी रहे हैं।
ये विश्व भारती छोड़कर सभी कार्यक्रम बहुत चाव से सुनते हैं।
साहब विश्व भारती से इनको क्या समस्या है, विश्व भारती में कुछ ऐसे नुक्स है क्या कि आप नहीं सुनते?
इसके लिए आपको एक और चिट्ठी लिखनी होगी और बताना होगा ऐसा क्यों करते हैं।
या ये भी हो सकता है कि इनको साफ सुनाई ना पड़ता हो, शायद इस वजह से ये विश्व भारती ना सुन पाते हो, लेकिन इंटरनेट पे, हमारी वेबसाइट पे, आपके मोबाइल पे तो हमारे चारों कार्यक्रम आप सुन ही सकते हैं।
एक चिट्ठी और,
एक चिट्ठी और है
जी, ले लेते हैं इसको, बहुत दिलचस्प लग रही है मुझे। बेहियांग चूड़चंद्रपुर मणिपुर से कृष्णा दहाल लिखते हैं, मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से बीबीसी हिंदी रेडियो का प्रसारण सुनता है।
ये मणिपुर से लिख रहे हैं, चूड़चंद्रपुर मणिपुर।
और ये लिखते हैं कि इन दोनों आदेश कुमार गुप्त अपना नाम नहीं बताते तो मेरा 5 साल का बेटा प्रतीक दहाल रोने लगता है और कहता है पापा आपने आदेश कुमार गुप्त नहीं लगाया।
अरे कितनी सुंदर,
मुझे झूठ बोलकर दूसरा स्टेशन लगा दिया, इसलिए आदेश जी अगर रोजाना खेल की खबरें प्रस्तुत करें तो मुझे और मेरे बेटे को खुशी मिलेगी।
ये बिल्कुल देखिए कितनी मोहब्बत से इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, और उस 5 साल के छोटे बच्चे को हम सब का प्यार, और उनसे जरूर कहिएगा कि इनका नाम बताइए दोबारा से।
इनका नाम है मणिपुर से कृष्णा दहाल।
कृष्णा दहाल साहब अपने 5 साल के छोटे बेटे से हमारी तरफ से खास तौर पे कह दीजिएगा कि आदेश कुमार गुप्त ही लगाया करेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब पता बता दूं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003। और अगर हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर लौटी पीवी सिंधु और उनके कोच पुलेला गोपीचंद के हैदराबाद पहुंचने पर उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। खुली बस में निकले सिंधु के विजय जुलूस का समापन काचीवावली स्टेडियम में हुआ, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जिस तरह का स्वागत पीवी सिंधु और उनके कोच पुलेला गोपीचंद को हैदराबाद में मिला उसकी तुलना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ की जा सकती है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना सरकार के मंत्रियों ने भी दूसरे लोगों के साथ उनका शानदार स्वागत किया, और उसके बाद एक खुले ट्रक में सिंधु और गोपीचंद और सिंधु के माता पिता को गच्चीबौली स्टेडियम को एक काफिले में ले जा गया। पूरे 35 किलोमीटर का रास्ते में सिंधु अपना रजत पदक दिखाती रही और लोगों को हाथ हिलाती रही, और सारे रास्ते लोग उनकी वाह वाह करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि बहुत जगह लोगों ने बेटी बचाओ के पोस्टर लेकर उनका स्वागत किए। उस शानदार स्वागत के बाद गोपीचंद ने माना कि वे पहले जब मेडल खुद जीते थे तो सोचे थे वे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अब उनकी सोच बदल गई है। उन्होंने कहा, हाँ, जब मैं पहला मेडल जीता तो सोचा कि अभी और कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद भी यही सोच थी, लेकिन अभी जिस तरह का समर्थन और प्यार मिल रहा है उससे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हम और जोर लगाएं अपने काम में। ये थे पुलेला गोपीचंद के शब्द। सिंधु ने पत्रकारों से मेडल जीतने के सवाल पर कहा, ये एक महान अनुभूति है, मैं तो इस भावनाओं को रखकर आगे बढ़ूंगी। मुझ पर भरोसा तो था ही, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था जब हम ओलंपिक्स को गए कि मैं फाइनल्स में खेलूंगी। ये थे सिंधु के शब्द। सिंधु ने माना कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो उनके कोच गोपीचंद के वजह से है, और गोपीचंद ने भी माना कि सिंधु और श्रीकांत जो मेडल नहीं जीत पाए, दोनों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सिंधु की लड़ाई की भावना की हर तरफ तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि दूरी की धावक में हिस्सा लिए ओपी जैशा दौड़ने के बाद बेहोश हो गई थी। वजह यह थी कि उनको हर 2 या 3 किलोमीटर के बाद कोई भारतीय अधिकारी नहीं था थोड़ा पानी देने के लिए। सिंधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर एक तरह से खुशकिस्मत हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
रियो में समाप्त हुए ओलंपिक खेलों में भारत के पड़ोसी देश चीन ने 26 स्वर्ण पदकों सहित 70 पदक जीते। इसके बावजूद चीन खुश नहीं है। दूसरी तरफ भारत को सिर्फ 2 पदक मिले। आखिरकार क्यों भारत का प्रदर्शन फीका रहा रियो में, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
कल ब्राजील के शहर रियो में 31वें ओलंपिक खेलों का समापन हो गया। भारत ने रियो में 117 एथलीट भेजे, जिन्होंने एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, टेनिस, मुक्केबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और बैडमिंटन जैसे कुल 15 खेलों में हिस्सा लिया। लेकिन पदक तालिका में भारत 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 67वें पायदान पर रहा। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। भारत के इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहा जाए, कहाँ रखा जाए, इसे लेकर खेल समीक्षक राकेश राव कहते हैं,
ऑब्वियस बात है कि ये कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और वो भी जो 2 मेडल्स, दोनों से उम्मीद नहीं थी, साइना से उम्मीद थी और कोई और रेस्लर से उनसे उम्मीद थी, लेकिन सिंधु और साक्षी से तो बिल्कुल नहीं। नंबर्स कितने थे हमारे पास उसमें, देखिए 32 लोग तो हॉकी वाले थे, 16 और 16, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। 34 थे हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड के, उनसे उम्मीद नहीं थी।
ललिता बाबर ही ऐसी एथलीट थी जो अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल तक पहुंची। 2-4 एथलीटों ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन विकास गौड़ा, सीमा अंतिल, मनप्रीत कौर, दुति चंद और रंजीत महेश्वरी जैसे जाने पहचाने नाम कुछ खास नहीं कर सके। इससे खुद हैरान है पूर्व एशियाई मैराथन चैंपियन सुनीता गोदारा।
कई एथलीट यहाँ से क्वालिफाई करके जाते हैं, वहाँ पर अपना वो टाइम भी नहीं दे पाते। अगर मैराथन में 2-3 मिनट का फर्क आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे बहुत गर्मी है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक थ्रोस का सवाल है, वहाँ पर 5-5, 6-6 मीटर पड़क आ जाए, ये तो बात कुछ जमती नहीं।
अब चर्चा कुछ उनकी भी, जिनसे पदक की बेहद उम्मीद थी, लेकिन उनके निशाने चूक गए, राकेश राव कहते हैं।
टूटर्स ने हमको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जो मेडल की उम्मीद सबसे ज्यादा थी वो उन्हीं से थी। 12 लोग थे 18 इवेंट्स में, वर्ल्ड क्लास स्कोर थे नीना सिद्धू के, जीतू राय के, इन सबसे उम्मीदें थी रियलिस्टिकली। लेकिन उनका स्कोर भी अच्छा नहीं आया, प्लेसिंग अच्छी नहीं आई, और हम देखें कि सिर्फ जीतू जो फाइनल में बड़ी मुश्किल से पहुंचे, मगर फाइनल में कभी लगा नहीं कि वो कहीं भी कंटेंशन में है। अभिनव बिंद्रा फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा शूट किया, 105 का, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो परफॉर्मेंसेज आपको देखेंगे, 4th प्लेस कली जो है, परफॉर्मेंस ओवरऑल तो डिसअपॉइंटिंग है। मतलब इसके बारे में अब हमको बैठ के सोचना पड़ेगा, ये कहना कि साहब नहीं हमने बड़ी मेहनत की और वहां जाके हमारे लोग अच्छा नहीं कर पाए, ये हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब एक नई सोच की जरूरत है और लॉन्ग टर्म की, 2020 के बारे में नहीं सोचना है, 2024 या 28 के बारे में सोच।
सुनीता गोदारा भी सुझाव देते हुए कहती हैं,
अपने यहाँ जो सिस्टम है उसमें हमारे पास में पूल ऑफ एथलीट्स, एक समुंदर नहीं है जिसका मंथन करके हम उसमें से क्रीम निकालें। इनको पूल बनाना पड़ेगा, अपनी ए टीम बी टीम तैयार रखनी पड़ेगी, जिससे कि अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो इनके पास रिप्लेसमेंट हो। इनके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं होता।
अगले ओलंपिक जापान में है, वहाँ भारतीय खिलाड़ी खाली हाथ सायोनारा कहते हुए ना आए, इसके लिए अभी से कमर कसनी होगी।
ये थी आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट। और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशासित कश्मीर की हालत पर दुख जताते हुए कहा है कि वहां मारे जा रहे लोग, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो या आम नागरिक, वे सभी, मोदी के शब्दों में, हमारे अपने हैं, अपने राष्ट्र का हिस्सा हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट का सीरिया के उत्तरी इलाके से पूरी तरह से खात्मा किया जाना चाहिए। इस बीच खबर है कि सीरियाई शहर हस्का में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाला था तिलकराज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।